सांझ पूरी तरह उतर चुकी थी जब हवेली के बड़े गेट के बाहर एक ऑटो आकर रुका। रम्या ने जल्दी से पैसे दिए, बैग कंधे पर डाला और इधर उधर देखते हुए अंदर की ओर बढ़ गई। उसके कदम सामान्य थे लेकिन दिल अभी भी तेज धड़क रहा था। जैसे ही वो आंगन में पहुंची, बरामदे में खड़ी शकुंतला की नज़र उस पर पड़ी। रम्या, आवाज में राहत कम और गुस्सा ज्यादा था। रम्या ठिठक गई। जी माँ, कहाँ थी तुम? शकुंतला ने तेज स्वर में पूछा। रम्या ने धीमे से कहा, स्कूल से बस से आई। शकुंतला आगे बढ़ी। बस से? तुम्हें पता है ड्राइवर खाली लौट आया, तुम्हें लेने गया था। रम्या ने होंठ भींच लिए। मैंने कहा था कि मैं आ जाऊंगी। इस पर शकुंतला की आवाज और ऊंची हो गई। तुम बच्ची हो अभी, तुम्हें अंदाजा है बाहर कितनी दुनिया खराब है? रम्या की आंखें झुक गईं। सॉरी माँ। तभी पीछे से रत्ना देवी की शांत लेकिन ठोस आवाज आई, बस भी करो अब। दोनों ने मुड़कर देखा। रत्ना देवी धीरे धीरे पास आईं और बोली, आ गई ना सही सलामत। शकुंतला कुछ कहती उससे पहले उन्होंने हाथ के इशारे से रोक दिया। डांट से ज्यादा भरोसा काम आता है। फिर उन्होंने रम्या की तरफ देखा, अगली बार बताकर जाना, समझी? रम्या ने तुरंत सिर हिलाया। जी नानी। अब जाओ कपड़े बदलो, खाना लगने वाला है। रम्या चुपचाप अंदर चली गई। शकुंतला अब भी चिंतित थी पर रत्ना देवी के सामने शांत रहीं। रात का खाना दबे माहौल में हुआ। सब टेबल पर थे लेकिन बातचीत कम थी। रम्या ने नजरें झुकाकर खाना खाया। उसे महसूस हो रहा था कि शकुंतला की नज़र बार बार उसी पर जा रही है। आर्यन और अदिति धीमे स्वर में आपस में बात कर रहे थे। श्यामली सामान्य दिख रही थी, जैसे उसे किसी बात की खबर ना हो। रत्ना देवी बीच बीच में साधारण बातें करती रहीं ताकि वातावरण हल्का बना रहे। खाना खत्म होने के बाद सब अपने अपने कमरों में चले गए और हवेली में रात का सन्नाटा उतर आया। रम्या का कमरा नीचे वाले हिस्से में था, आंगन से सटा हुआ। उसने दरवाजा बंद किया, बैग एक तरफ रखा और बिस्तर पर बैठ गई। दिल अब भी दिन की यादों से भरा था। उसने फोन उठाया, स्क्रीन पर गगन का मैसेज था। घर पहुंच गई? उसके होंठों पर मुस्कान आ गई। उसने जवाब लिखा, हाँ थोड़ी डांट पड़ी। तुरंत रिप्लाई आया, सॉरी मेरी वजह से। रम्या ने टाइप किया, नहीं मैं संभाल लूंगी। कुछ देर बाद उसने फोन साइड में रख दिया। कमरे की खिड़की आधी खुली थी। बाहर नीम का पेड़ था जिसकी शाखाएं हवा में हिल रही थीं। रम्या खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। आसमान में आधा चांद था और आंगन चांदनी से हल्का सा उजला लग रहा था। तभी नीचे दीवार के पास हल्की सी आहट हुई। रम्या का दिल उछल पड़ा। उसने झुककर देखा। अंधेरे में एक परछाई हिली और धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। रम्या। गगन, उसने धीमे से कहा। नीचे खड़ा गगन मुस्कुरा रहा था। दरवाजा मत खोलना, यहीं आ जाओ, उसने कहा। रम्या घबरा गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, अगर किसी ने देख लिया तो? गगन ने इधर उधर देखा। सब सो गए हैं, बस तुम्हें देखने आया था। उसका कमरा नीचे होने से खिड़की तक पहुंचना आसान था। गगन दीवार पकड़कर ऊपर चढ़ाया और खिड़की के सामने खड़ा हो गया। रम्या का दिल तेजी से धड़क रहा था। तुम पागल हो, उसने धीमे से कहा, मगर आवाज में चिंता ज्यादा थी। गगन मुस्कुराया, हाँ तुम्हारे लिए। कुछ पल दोनों चुप रहे। हवा में नीम की पत्तियां सरसराई। डांट बहुत पड़ी, उसने पूछा। रम्या ने हल्के से कहा, थोड़ी, माँ डर गई थी। गगन ने खिड़की को पकड़ते हुए कहा, मेरी वजह से परेशानी तो नहीं होगी? रम्या ने सिर हिलाया, नहीं मैं संभाल लूंगी। मैं बस तुम्हें देखना चाहता था, गगन ने धीमे स्वर में कहा। रम्या की आंखें नर्म हो गईं। अब देख लिया, उसने पूछा। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। चांदनी में दोनों के चेहरे हल्के से चमक रहे थे। रम्या ने उसे चेतावनी दी, ऐसे बार बार मत आना, ये हवेली है, यहाँ हर आवाज गूंजती है। गगन ने छेड़ते हुए कहा, तो बुलाओ मत। रम्या मुस्कुरा दी, मैंने बुलाया कब? गगन ने धीरे से खिड़की की कुंडी पकड़ी। रम्या ने एक पल सोचा, फिर फुसफुसाई, बस 5 मिनट और कोई आवाज नहीं। गगन सावधानी से अंदर आया। उसके जूते उसने हाथ में पकड़ लिए ताकि आवाज ना हो। कमरे में हल्की पीली रोशनी थी। बाहर नीम की शाखाएं अब भी हिल रही थी। दरवाजा बंद था पर रम्या बार बार उसकी तरफ देख लेती थी। तुम सच में पागल हो, रम्या ने धीमे स्वर में कहा। पता है, गगन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, पर तुम्हें देखे बिना नींद नहीं आती। रम्या बिस्तर के किनारे बैठ गई। गगन थोड़ी दूरी पर कुर्सी खींचकर बैठा, जैसे खुद को याद दिला रहा हो कि हद पार नहीं करनी। आज जब तुम ऑटो से उतरी थी ना, गगन ने कहा, तुम बहुत बहादुर लग रही थी। रम्या हल्का सा हंसी, बहादुर? अंदर से तो जान निकल रही थी। कुछ पल दोनों चुप रहे। उस चुप्पी में धड़कनों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। तुम्हारी माँ बहुत स्ट्रिक्ट है, गगन ने पूछा। स्ट्रिक्ट नहीं, डरती हैं, रम्या ने धीरे से कहा, उन्हें लगता है दुनिया बहुत खराब है। गगन ने गंभीर होकर कहा, मैं उन्हें गलत साबित करूंगा। कैसे? एक दिन सामने आकर, छुप कर नहीं। रम्या ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में शरारत नहीं सच्चाई थी। इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करो, रम्या ने हल्का सा उसे टोका, पहले अपनी पढ़ाई पूरी करो। और तुम? मैं बस इतना चाहती हूँ कि ये सब सही तरीके से हो, उसने धीमे से कहा। गगन उठकर उसके पास आ गया, लेकिन दूरी बनाए रखी। डर लग रहा है, रम्या ने सच बोला। हाँ थोड़ा, अगर किसी ने देख लिया तो मैं भाग जाऊंगा, उसने हंसते हुए कहा। मजाक मत करो, रम्या ने उसकी बाह पर हल्की सी चोट की। उस हल्की छुअन में ही दोनों के बीच की नरमी साफ थी। आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो, गगन ने धीरे से कहा। रम्या ने नजरें झुका ली। हर दिन यही कहते हो, क्योंकि हर दिन सच होता है। कमरे में फिर सन्नाटा फैल गया। बाहर कहीं दूर कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। रम्या ने घबरा कर दरवाजे की ओर देखा। आप जाओ, उसने फुसफुसा कर कहा। सच में? गगन ने सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन एक चीज तो मिलनी चाहिए। क्या? हिम्मत के लिए रिवॉर्ड, रम्या ने भौहें चढ़ाई। तुम्हें तो, वो वाक्य पूरा भी नहीं कर पाई। एक पल रुककर उसने धीरे से कदम बढ़ाया और गगन के दाएं गाल पर हल्का सा किस कर दिया। दोनों कुछ सेकंड तक स्थिर रह गए। उसी क्षण दरवाजे की कुंडी हल्की सी खनकी। रम्या का चेहरा सफेद पड़ गया। दरवाजा आधा खुला और वहां शकुंतला खड़ी थी। उनकी आंखें सीधी उस दृश्य पर जमी हुई थी। रम्या, उनकी आवाज धीमी थी पर उसमें तूफान छिपा था। गगन के हाथ से जूते लगभग गिर गए। उसने एक पल भी गवाए बिना खिड़की की ओर छलांग लगाई। रुको, शकुंतला की आवाज गूंजी, लेकिन तब तक गगन दीवार पकड़कर नीचे कूद चुका था। बाहर भागते कदमों की हल्की आहट आई, फिर सन्नाटा। कमरे में रम्या और शकुंतला आमने सामने खड़ी थीं। समय जैसे ठहर गया।